श्रुत्वा गातं देवयानी मेने प्रस्थोभम आत्मनः मेने प्रस्थोभम आत्मनः त्रिपुंसो स्नेह वैकल्यात् त्रिपुंसो स्नेह वैकल्यात् परिहासम इवेरितम् परिहासम इवेरितम् श्रुत्वा गातां देवयानी मेने प्रस्थोभम आत्मनः त्रिपुंसो स्नेह वैकल्यात् परिहासम इवेरितम् श्रुत्वा गातं देवयानी मेने प्रस्थोभम आत्मनः त्रिपुंसो स्नेह वैकल्यात् परिहासम इवेरितम् श्रुत्वा गातं देवयानी मेने प्रस्थोभम आत्मनाम् त्रिपुंसो स्नेह वैकल्यात् परिहासम इवेरितम् श्रुत्वा गातं देवयानी मेने प्रस्थोभमात्मनः त्रिपुंसो स्नेह वैकल्यात् परिहासम् इवेरितम् श्रुत्वा गातं देवयानी मेने प्रस्थोभमात्मनः त्रिपुंसो स्नेह वैकल्यात् परिहासम् इवेरितम् श्रुत्वा गातं देवयानी मेने प्रस्थोभमात्मनः त्रिपुंसो स्नेह वैकल्यात् परिहासम् इवेरितम् माताजि श्रुत्वा गातं देवयानी मेने प्रस्थोभमात्मना त्रिपुंसो स्नेह वैकल्यात् परिहासम् इवेरितम् श्रुत्वा गातं देवयानी मेने प्रस्थोभमात्मनः त्रिपुंसो स्नेह वैकल्यात् परिहासम् इवेरितम् श्रुत्वा सुनकर गातं तथा देवयानी
महाराज
यति के पत्नी देवयानी मैंने समझ गई प्रस्तोभम प्रस्तोभम आत्मना
के लिए उपदेश दिए जाने पर
त्रिपुंस पति तथा पत्नी के बीच स्नेह
वैकल्यात्
प्रेम तथा स्नेह के विनिमय से
परिहासम
मजाक
यह कहानी
जीवा
संतुष्टम
ईरितम
कही गई
जजाति द्वारा
जय
जजाति द्वारा कही गई बकरे बकरी की कथा को सुनो सुना तो वो समझ गई आज कन्या के रूप में पति पत्नी के मध्य मनोरंजनार्थ कही गई ये कथा उसमें स्वाभाविक स्थिति को जागृत करने के निमित्त थी। जब मनुष्य भौतिक जीवन के प्रति सजग होता है तो उसे कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी असली स्थिति को ज्ञान अपनी असली स्थिति का ज्ञान होता है। ये मुक्ति कहलाती है मुक्ति हित्वा न न यथा रूपम सर्वजनक व्यवस्थित भागवत के भागवत में माया के वशीभूत इस जगत में हर जीव अपने को हर वस्तु का स्वामी मनुष्य सोचने की न ईश्वर है न कोई नियंत्रक और वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। यह भौतिक दशा है और जब मनुष्य इस अज्ञान से जागता है तो वो मुक्त रहता है। महाराज जजाति ने देवयानी को कुएं से निकाला था और अंत में कर्तव्य निष्ठ पति की तरह बकरे बकरी की कथा सुनाकर उसे उपदेश देकर भौतिक सुख की भ्रांत धारणा से मुक्त किया। देवयानी अपने मुक्त पति को समझ सकने में पूर्ण तरह सक्षम थी।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरानंदस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सार्वजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। सप्तकाञ्चन गौरङ्गे श्रीनदे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
आज के श्लोक में ये प्रसंग चल रहा है कि महाराज ययाति जो हैं, उनके जो पत्नी देवयानी को कैसे जो सेल्फ रियलाइज लिबरेशन का मार्ग बताया है, सेल्फ रियलाइजेशन का हिंदी में आत्मसाक्षात्कार कि कैसे मार्ग बताया है और उन्होंने कैसे उसको अनुसर किया है, उसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें प्रभुपाद जी जो ट्रांसलेशन में बताते हैं कि ये अपना जो निजी स्वरूप के अंदर उनको लेके आने के लिए वो कह रहे थे। ये निजी स्वरूप कैसे कैसे किसी को मिलता है, कैसे समझते हैं? प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि भक्ति दृष्टांत सिंधु के अंदर कि ये जो सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन दोनों चीज जो हैं वो एक साथ होता है, एक साथ होता है। जैसे कि हम किसी रोशनी वाले कमरे के अंदर अंधकार से रोशनी वाले कमरे में जाते हैं, हम अपने आप को भी देख सकते हैं और जहां से रोशनी आ रहा है वो जो लाइट है उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी का मतलब यही था कि दोनों चीज साथ साथ चलते हैं, कि ये नहीं कि भगवान का रियलाइजेशन और अपना रियलाइजेशन अलग अलग है। अपना रियलाइजेशन कब होता है? जब अपना निजी जो पोजीशन पे आए, जो कि कृष्ण का नित्य सेवक और उनका सेवा करना है, वो तभी हो सकता है जब भगवान हमारे अंदर आके वो जो अंधकार को हटाया जाए। ये जो रियलाइजेशन जो है महाराज ययाति अपने पत्नी को दे रहे हैं, किस रूप में दे रहे हैं? एक कहानी में बता के दे रहे हैं। ऐसे रियलाइजेशन हम शास्त्र में सुन चुके हैं, बहुत 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 महान व्यक्ति ये सब कर चुके हैं। ये श्रीमद् भागवतम जो है महाराज परीक्षित के चले जाने के बाद खत्म नहीं होता है। उसके बाद ऋषि लोग और पूछते हैं कि और क्या है, और क्या हुआ है, और उत्सुक हैं उनको और सुनने के लिए। तो उस समय शुद्ध गोस्वामी जी बताते हैं कि मार्कंडेय ऋषि के बारे में, उनका भी रियलाइजेशन बहुत अच्छा है। मार्कंडेय ऋषि जो हैं मार्कंड ऋषि के पुत्र हैं, तो मार्कंड ऋषि के पास कोई पुत्र नहीं थे, तो फिर उन्होंने भगवान शिव के तपस किया करने के बाद, कई साल करने के बाद उनको प्रसन्न होके उनसे पूछा कि क्या चाहिए, बोला कि पुत्र चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि पुत्र तो मिलेगा आपको, या तो जो मूर्ख पुत्र कई साल जिएगा आपके साथ साथ रहेगा, नहीं तो बहुत इंटेलिजेंट पुत्र जो 16 साल तक जी पाएगा, बहुत अच्छा पुत्र मिलेगा। तो मार्कंड ऋषि ने बोला है कि हमें अच्छा पुत्र 16 साल का ही वो चाहिए। तो उनको वो पुत्र हो गया, वो मार्कंडेय, ठीक है। तो वो इतने वो सब खुश थे, माता पिता और मार्कंडेय। जैसे 16 साल आया है तो दोनों मार्कंडेय ने ऋषि ने देखा है कि दोनों अपने माता पिता के जो मुंह के अंदर वो जो खुशी जितने 15 साल था वो नहीं रहा। तो उन्होंने पूछा कि क्या है, तो जब ये विस्तार से बताया गया कि ऐसा है, तो मार्कंडेय ऋषि गए, फिर उन्होंने फिर तप किया, फिर तप करके भगवान शिव को फिर उन्होंने प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद वहां तक नहीं, उनको वरदान मिला। क्या वरदान मिला है? वो इतना लंबा जिएंगे, 4-5 मनवंत्र या 5-6 मनवंत्र, एक ब्रह्मा जी के एक दिन जो 12 घंटे, जो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं उनमें 14 मनवंत्र है, ठीक है। उनमें से ये 5-6 मनवंत्र जिएंगे, उनको ये वरदान मिला है। कितना लंबा हो सकता है? फिर वो जाके फिर उनके फिर क्या करते, फिर जाके फिर से मेडिटेशन तपस करते रहें। तो जब भी कोई महापुरुष तपस करते हैं किनको तकलीफ होता है? इंद्र को, ठीक है। तो बाकी लोगों ने बताया, ऋषि लोगों ने बताया कि नहीं, इनके उसका आपके लिए कोई तकलीफ नहीं है, वो तो अच्छे वो नहीं करेंगे। फिर भी जाके इंद्र ने कोशिश किया, फिर कर नहीं कर पाए। फिर उस समय उन्होंने सब, क्योंकि इतने साल से तपा करके देख रहे थे, वो पूरा सृष्टि में क्या होता था, कैसे सृष्टि बनता था, कैसे सब होता, सब पूरा देखते थे। तो एक बार नर ऋषि भी उनके तपस्या से प्रसन्न होके गए उनके पास, बोला कि क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने क्या पूछा उस समय कि मुझे आपका जो माया शक्ति जो है, इल्यूसरी एनर्जी, वो देखना है हमें, ठीक है। तो राम कृष्ण ने बोला ठीक, तथास्तु, देखिए। तो तब वो उस उलझन में फंस गए। वो जीते थे इतने साल और क्या देखते थे? उनका माया शक्ति, कभी खुशी कभी गम, ये सब पूरा। तो उनसे एक साल नहीं, दो साल नहीं, कई मिलियन कई बिलियन साल ऐसे जीते रहे और उनसे सह नहीं पाता था, उनको इतने दुख हो गए, दुखी हो गए पूरा। तो वो क्या किया, फिर भगवान शिव का तपस किया। फिर इस बीच में जानते हैं कि कहानी लंबा है, जो भगवान कृष्ण भी एक पत्ते में भी आते हैं छोटे बालक के सामने, तो फिर वो सब भी देखते हैं क्या, ये खुद अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, ये सब भी देखते हैं। तो ये सब होने के बाद भगवान शिव आते हैं, तो पूछ लेते हैं कि अब क्या चाहिए आपको। तो उस समय पूछते हैं कि हमें भगवती अच्युत भक्ति चाहिए। सबसे पहले सब बता दो, अच्युत कौन है? भगवान कृष्ण है, उनका परम भक्ति चाहिए। दूसरा चीज क्या पूछते हैं, उनके जितने संग में रहते हैं, उनके जितने भक्त लोग हैं, उनके साथ हमें रहना है, संग पूछते हैं। ये दोनों पूछते हैं। ये कितने साल के बाद पूछे हैं इन्होंने? 2 या 3 बिलियन के साल के बाद पूछा है। जय श्री श्री राधा गिरिधारी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महाराज। वैसे ही अब देखेंगे तो एक और महापुरुष जो है भागवतम, जिसके वजह से हुआ है, तो महाराज परीक्षित जी। तो इनका क्या रियलाइजेशन है, जब ये जा रहे थे तो ब्राह्मणों से इन्होंने आशीर्वाद मांगा। क्या आशीर्वाद मांगा है ब्राह्मणों से? क्या आशीर्वाद मांगा इन्होंने ब्राह्मणों से? भी यही मांगा है इन्होंने कि भगवती अंते रहती, कंप्लीट डिटैच अटैचमेंट टू द सुप्रीम कृष्णा, अनलिमिटेड कृष्णा। और दूसरा चीज मांगा उन्होंने, प्रसंग आश्रय यीशु, जो उनके जो भक्त हैं उनके साथ संग में रहने के लिए आशीर्वाद मांगा ब्राह्मणों से। बस यही नहीं, उसके साथ एक और चीज भी मांगा उन्होंने, मांगा है मैत्रेयी अस्तु सर्वत्रा, कि बाकी जितने जीव हैं उनके साथ जो फ्रेंडली संबंध मांगा है उन्होंने। ये महाराज परीक्षित ने 7 दिन के बाद, एक महापुरुष 2 बिलियन साल के बाद इनके स्थिति पे पहुंचे हैं, दूसरा 7 दिन के बाद ये पहुंचे हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हाउ कैन यू अवेक कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाउ कैन यू बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस, कहते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, और एक सेकेंड में, एक निमिष में हो सकता है, बोलते हैं। क्या मतलब है ये? ये हमारा जो कॉन्शियसनेस है, चेतना, अगर वो चेंज हो जाए, जरूरत नहीं हम लोगों को 2 बिलियन साल लगे, जरूरत नहीं आपको 7 साल लगे, 7 दिन लगे। रूपा जी कहते हैं विद इन ए मिनट, within a second हम लोग भगवान और अपने आप को साक्षात रियलाइज कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं। और ये अगर भागवत में और देखा जाए कि एक और महापुरुष हैं, उनका क्या रिलेशन होता है। हम जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जाते हैं, वो तो बहुत ही दुख कहानी है। जब मथुरा पहुंचते हैं वहां पर बहुत लीलाएं करते हैं, कंस से मिलने से पहले जाते जाते एक तो लीला है, और जो गार्लैंड बनाते हैं उनका नाम भी सुदामा है, उनसे जाकर मिलते हैं, पूछते हैं कि हमें कुछ, क्योंकि भगवान कृष्ण तो जानते ही हैं, वो तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनका तो ये वो है, हम भी दर्शन अच्छा करके वो सब उनको खुश रखते हैं। तो वो कपड़े पहन लिया, फिर सब पहन लिया, फिर बोला कि हमें तो गार्लैंड चाहिए, अच्छा गार्लैंड। तो सुदामा जी के पास जाते हैं, सुदामा जी बहुत प्रसन्न होते हैं और गार्लैंड देते हैं। अब कृष्ण बलराम दोनों बहुत प्रसन्न होके उनसे बोलते हैं कि आप मांगिए, आप क्या चाहते हैं। तो सुदामा जी पूछते हैं सेम जो महाराज परीक्षित जी ने पूछा, अचलम भक्ति, अनशेकेबल भक्ति, मतलब कुछ भी हो मेरे साथ, मेरे आपके प्रति जो डिवोशन है और भक्ति है वो निष्ठा वो रहना चाहिए, सबसे पहले ये चीज पूछते हैं। और दूसरा चीज क्या पूछते हैं, सद भक्तेषु च सहृदम, आपके जितने जो भक्तगण हैं उनके साथ मित्रता पूछते हैं। सेम चीज जो महापुरुष लोग यही पूछते हैं। और तीसरा ये क्या पूछते हैं, अब ये दोनों तो महाराज परीक्षित ने भी पूछा है, तीसरा चीज क्या पूछते हैं, ये भूतेषु च दयाम परम, परम दया पूछते हैं किनके प्रति, सर्वभूतेषु, जितने जीव हैं उनके प्रति ये मांगते हैं उनके दिल के अंदर परम दया, मामूली दया नहीं, परम दया, पार दया, ये मांगते हैं। अगर ये अब देखा जाए, और ये महाराज परीक्षित से भी ऊपर से पूछ रहे हैं, इनका रियलाइजेशन जो है ये आज के जो उसमें, ये जो परम दया और सर्वभूतेषु किन में देखते हैं हम लोग, अगर उनका नहीं होता तो हम लोग नहीं बैठते हैं आज शिला प्रभुपाद जी। ठीक है, सेम चीज जो है, जब हम ये महापुरुष लोगों का ये सुनते हैं रियलाइजेशन और क्या पूछते हैं, इसमें पता चलता है कि हम लोगों को क्या मांगना चाहिए। कई बार हम भक्ति करते हैं, शिला प्रभुपाद ही पहले महापुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का एक्चुअल डेफिनेशन दिया है, भक्ति इज नॉट डिवोशन, भक्ति इज डिवोशनल सर्विस। ठीक है, सेवा है, वो स्टैटिक चीज नहीं है, वो एक्टिविटी है। जीव जो है एक स्थिर एक जगह नहीं रह सकता, उनको कुछ ना कुछ करना है, तो उसका जो अपना इंद्रिया जो है कैसे एंगेज करना है, किस भगवान के सेवा में, तो एक्टिविटी इज द प्रोसेस, खाली डिवोशन नहीं है। भक्ति इज नॉट इक्वल टू डिवोशन, भक्ति इज इक्वल टू डिवोशनल सर्विस, तभी हम लोग इसमें आ सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने हमें ये सिखाया कि डिवोशनल सर्विस के बारे में, तो जितने भी महापुरुष लोगों से हम लोग क्या सीखते हैं कि कैसे हमारे अंदर जो है इच्छा जागृत होना है, और क्या पूछना क्या है भगवान से। हम जानते हैं हमें भक्ति करना है और एक सेवा करना है, लेकिन पूछना क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। पहला प्रभात बताते हैं, जब तक आपके दिल के अंदर देर इज नो डिसायर फॉर कृष्णा, वो नहीं मिलेगा कृष्णा। अगर आप लोग भक्ति करते हैं कृष्णा जो भगवान के लिए संतुष्ट करने के लिए, तो फिर जब तक आपके अंदर वो इच्छा नहीं है वो तो नहीं हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु जो खुद आए हैं, तो क्या उन्होंने, उनका चेतना कैसे था, हमेशा हर जगह उनको कृष्ण 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 करके देखते रहते थे। अगर हम देखते हैं सबसे ऊंचे भक्त लोग कौन हैं, गोपी लोग हैं। तो जब उद्धव जी जाते हैं उनको सिखाने के लिए ज्ञान, तो वो क्या सीख के आते हैं? वो प्रेम सीख के आते हैं, भक्ति सीख के आते हैं। कैसे? वहां पर गोपी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भगवान को कैसे भूला जाए। ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भगवान को हमें याद करें। ये डिफरेंस होता है। तो भगवान को जो है गोपी लोगों का हमेशा हमेशा होता है। एक बारी चैतन्य महाप्रभु जी से एक ब्राह्मण जी ने पूछा था कि हम लोग भी देखते हैं कुछ लोग जब हम लोग बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत बहुत अच्छा है, आइए आप प्रसाद पाइए, मंदिर आइए देखिए, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग डिवोशनल सर्विस करते भी हैं, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रगति होता है हम देखते हैं। तो ये सवाल ब्राह्मण जी ने उनसे कहा कि ऐसे कैसे है कि कुछ लोग बहुत तेजी से प्रोग्रेस करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, कि क्या होता है? तो उनका सीधा सवाल का जवाब दिया है उन्होंने कि ये उनके निष्ठा के ऊपर होता है, जो श्रद्धा के ऊपर, श्रद्धा जो है मेन चीज है इनके लिए। जिनके श्रद्धा है कृष्ण के ऊपर और सेवा के ऊपर, खुद हो अगर वो अचलम भक्ति के लिए मांगते हैं, जैसे सुदामा जी ने पूछा है अनशेकेबल फेथ, कुछ भी हो तो वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो ये जागृत करने के लिए क्या चाहिए हमें? दूसरा चीज सुदामा जी ने और क्या दूसरा चीज पूछा है? तद्भक्ते शुचा साफुदम, फ्रेंडशिप चाहिए बाकी जो उनके दोस्तों के साथ, मतलब बाकी जीव के साथ, तो तभी एक साथ करके कर सकते हैं। नहीं तो फिर मन जो है इतना चंचल है तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये सब हमारे लिए मंदिर सेंटर्स ये सब बनाए हैं। किस लिए? हम लोग सब मिलके भगवान का भजन करें और अपना उद्धार करें, बाकी लोगों का भी उद्धार किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों का उद्धार भी करना है, क्योंकि हमारा मिशन जो है ये प्रीचिंग मिशन है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बारी कहा है कि हमारा मिशन ये जो बाबाजी वाला मिशन नहीं है कि बैठ के एक जगह भजन करेंगे ना। अगर वो श्रील प्रभुपाद जी ने वो किया होता तो हम लोग यहां नहीं बैठते आज। वो 70 साल की उम्र के अंदर गए बाहर, बाहर जाके प्रचार सब किया। अब प्रचार करके उन्होंने वो सब एस्टैब्लिश कर दिया। एक बारी हमारे ग्रेस कुमदास प्रभु जी उस दिन बता रहे थे, प्रभुपाद जी ने सब कुछ कर लिया है, आग लगा दिया है, हमें तो खाली हवा देना है। तो वो हवा देने के लिए हम कितने लोग रेडी हैं? पूरा हम तो रेडी हैं, लेकिन कितना जोर से हवा दे रहे हैं आग को ऊपर रखने के लिए। ये सब चीज है, हम लोग इतने बाहर जाते हैं, यहां पर कितने बाहर आउटरीच प्रचार होता है। प्रचार होने के बाद भी किस लिए प्रचार करते हैं हम लोग? बाकी लोगों को कृष्ण के बारे में बता के और मंदिर बुला के उनके अंदर जो कृष्ण का, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का जागरूक करने के लिए अंदर। लेकिन जब वो लोग अंदर इधर आते हैं, हमारे में ये कमी रहता है कि हम लोग उनके लिए देखभाल नहीं कर पाते, हम लोग पूछते भी नहीं है। ये देखा जाएगा तो फिर जो कोई व्यक्ति ये जो कंपाउंड में आते हैं, शिशि राधा गिरिधारी जी के कंपाउंड में आते हैं, तो वो मामूली व्यक्ति नहीं है, वो अपने आप नहीं आ रहे हैं, वो उनको बुलाएगा। कौन बुलाते हैं? शिशि राधा गिरिधारी जी बुलाते हैं उनको। तो उनके कौन है? वो अतिथि हैं। ये तो कई बार लोग बोल के आते हैं, अतिथि जो वो व्यक्ति होता है जो बिना बोले आए। ठीक है, तो हम लोग यहां पर शिला प्रपा जी के प्रतिनिधि हैं, श्री राधा गिरिधर जी के सेवक हैं। उनके घर में कोई आते हैं तो फिर उनको कैसे सत्कार किया जाए? अभी इस ग्रेस संकीर्तन प्रभु जी आए हुए थे, वो 17 साल इसी पे लगे रहे। तो अब देखा जाए उनके वहां पर सुनेंगे पूरे चौपाटी और उस एरिया के अंदर जो ज्यादा आधे से ज्यादा जितने लोग भक्त बने हैं सब। और ये भी सुनते हैं कि वो वहां कई लोग उधर आते हैं उनसे खाली मिलने, क्योंकि भगवान जो है जो अपने भक्त का जो प्रशंसा बहुत सुनना चाहता है, वो खुद ग्लोरीफाई करते हैं भक्त के लिए। तो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है कि हम लोग जितने लोग बाहर जाके इतना प्रचार कर रहे हैं, जो लोग हमारे मंदिर आते हैं उनके कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ ज्यादा पैसे नहीं लगता, बताते हैं प्रभु जी की। और शास्त्र में भी बताते हैं क्या है, उनसे खाली नाम पूछा जाए, उनके साथ 2 मिनट बैठ के हमें खाली ये तो बता दें कि ये कौन है, प्रभुपाद जी कौन है, तुलसी महारानी कौन है, किसी राधा गिरिधारी के बारे में उनके परिचय करा दें। जगन्नाथ जी, कई लोगों को जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा जी के बारे में जानते नहीं है, इनका स्वरूप क्या है, आप बैठ के एक बार बता कर तो देखिए उनके साथ। तो क्योंकि ये जो हम बताते हैं किसी को, ये अपने से नहीं होता है, किसी के अंदर अगर जागृत करना है कृष्ण भावनामृता, ये अपने से नहीं होता है, ये शास्त्र सीधा सीधा बताता है। अगर अपने उसमें क्या होता है कि अपना परमात्मा हमारे अंदर जो परमात्मा है और दूसरे के अंदर परमात्मा को जो कनेक्शन होता है तभी कोई फायदा होता है उनका। तो आपको खाली इधर कुछ नहीं करना, इधर आके उनके सामने बैठ के जब 2 शब्द उनसे बात करना है, चरणामृत देना है, भगवान का तो फूल उनको देना है, अगर हमारे पास प्रसाद मिल जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है, छोटा सा प्रसाद है, छोटा सा लड्डू हो, कुछ भी हो, उनके हाथ में देना है। तो ये सब अतिथि हैं। तो हम लोग इस प्रभुपाद जी बताते हैं और कई आजकल जो हमारे गुरुजन हैं सब लोग उनका यही है कि हम लोग इतने बाहर प्रचार कर रहे हैं, सेंटर बना लिए, लेकिन सेंटर में देखने के लिए कोई नहीं है, जहां पर जो लोग आते हैं उनको रिसीव करने के लिए कोई नहीं है। तो हमारे आप लोगों से एक ही विनती है, हम लोग एक गेस्ट रिसेप्शन जो अतिथि सेवा के लिए एक डिपार्टमेंट या प्लान बना रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों की सहायता चाहिए। हमारी विनती है कि जितने लोग उसके लिए सहायता कर सकते हैं, श्री राधा गिरिधारी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और गौर निताय के सेवा में हमसे बाद में मिल सकते हैं। कृष्ण, आज एक और इम्पॉर्टेंट दिन है, आज ओडन षष्ठी है। ओडन षष्ठी के बारे में कितने लोग जानते हैं, इस दिन जो है जगन्नाथपुरी के अंदर और हमारे उधर राजापुर जगन्नाथ मंदिर मायापुर में अंदर बहुत अच्छा फेस्टिवल मनाते हैं। आज का दिन क्या है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ विंटर जगन्नाथ जी के लिए। तो अलग अलग टाइम होता है, वहां पर आज के दिन जगन्नाथ जी को जो पांडा लोग जो हैं 19 वस्त्र पहनाते हैं, क्या आगे 19 वस्त्र अलग अलग, अंदर शर्ट मान लीजिए, स्वेटर मान लीजिए, चादर मान लीजिए और टोपी कुछ भी, तो खाली मुंह दिखाई देता है, बाकी सब पूरा कवर कर लेते हैं। ये कपड़े बोलते हैं कि ये जो वस्त्र हैं बहुत बड़े बड़े भी हैं, कई कहीं तो फिर 16 फुट के भी हैं आज पहनाते हैं। तो ये डेली पहनाते हैं जब तक ये बसंत पंचमी तक, उसके बाद वो वस्त्र का नंबर जो है आधा कर लेते हैं मकर संक्रांति तक। तो 19 हो गया, तो फिर 9.5 हो गया, ठीक है। ये जो इसमें एक चैतन्य महाप्रभु भी इसका जो लीला में है उधर, एक बहुत अच्छा लीला चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी बताते हैं हम लोगों को कि हर बारी कुछ भक्त लोग बंगाल से तो आके मिलते रहते हैं चैतन्य महाप्रभु को। एक बारी पुंडरीक विद्यानिधि जो भक्त हैं तो वो भी चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए थे बंगाल से, तो इसी दिन उधर पहुंचे थे उधर। तो उनके अच्छे दोस्त हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, तो वो दोनों एक साथ रहते हैं और डेली मंगल आरती में जाते हैं और भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। तो वो कोडन षष्ठी वाले दिन गए उधर, तो जाके क्या देखा, चैतन्य महाप्रभु के साथ गए तो वहां देखा कि भगवान को सब कपड़े पहना रहे हैं, लेकिन वो सब कपड़े जो हैं स्टार्च कपड़े हैं। हिंदी में स्टार्च का क्या बोलते हैं, यूजुअली जब कपड़े लेते हैं नए कपड़े भगवान को पहनाने से पहले उसको धो के उसका जो स्टार्च है वो सब निकालना पड़ता है, वो तो विधि है और शास्त्र कहता है चीज। तो लेकिन वहां देखते हैं तो फिर वो डायरेक्टली वही पहना रहे हैं, बल्कि वहां के जो पुजारी लोग हैं वो भी वैसे पहन रहे हैं, और ये दोनों देखे। फिर वापस जब आ रहे होते हैं जो पुंडरीक विद्यानिधि जी और स्वरूप दास दामोदर जी, वो आपस में बात करते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि जी कहते हैं कि ये तो ये क्यों पहनाते हैं ऐसे, हाँ यहाँ पर देखते हैं ये सेवा अच्छा होता है, हाँ जो राजा ठीक ठाक देख लेते हैं इनको, फिर भी ये लोग स्टार्च कपड़े क्यों पहनाते हैं। तो स्वरूप दामोदर जी कहते हैं नहीं कोई नहीं, यहाँ पर भगवान ऐसे उनकी इच्छा हो। तो फिर बोलते हैं नहीं नहीं भगवान के कुछ भी, भगवान कुछ भी ले लें लेकिन हम लोग को तो नहीं करना चाहिए ऐसा ना, भक्त को तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे बात करते करते चले जाते हैं वापस। फिर रात को क्या होता है, रात को कुंडरीक विद्यानिधि जी को उठाते हैं, कौन उठाते हैं, जगन्नाथ जी और बलराम जी। कैसे उठाते हैं, टप्पड़ से मुखों से अपने गालों में उनके, हमारे भक्त और हमारे बीच में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी पहना है मुझे पसंद है, मेरे को पहनना है, आपको कोई डिस्कस नहीं करने का है, कोई इसके बारे में बात नहीं करना है, वो अपराध नहीं करने का, ठीक है, ये होता है। उसके बाद अगले दिन ये मंगल आरती में नहीं पहुंचते हैं तो स्वरूप दामोदर जी आते हैं कि क्या हो गया हमारे दोस्त को, आके देखते हैं कि उनका क्या गाल पूरा दम से सूजा हुआ है। तो जब ये बताते हैं कि ये हुआ है तो स्वरूप दामोदर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, अरे आपके गालों में भगवान का खुद का हाथ लगा हुआ है, आपके मस्तक पे भगवान का हाथ लगा है, कितना अच्छी बात है। ये देखेंगे कि कितने कितने लोगों को भगवान ने खुद डायरेक्ट दंड दिया है, बहुत ही कम। ये भी किसी किसी का भाग्य में लिखा होता है, भगवान जिनको चूज कर सकते हैं उनका कॉस्टलेस मर्सी है, ठीक है। इसमें ये बताते हैं कि वैष्णव अपराध क्या है इस अरुण सुस्ती के लिए, ये मन में भी ऐसा सोचना नहीं है और बात में भी ऐसा नहीं करना है। इसलिए हम लोग जब जगन्नाथपुरी जाते हैं वहां पर पांडव लोग और जगन्नाथ जी का क्या रिश्ता है हम नहीं जानते हैं, वहां पर वो मामूली लोग नहीं है, तो उनके हाथ में वो जो सिक्स होते हैं उनसे तो पोक करते हैं हम लोगों को। सबसे पहले हमें जब ये सोच के जाना चाहिए वो सब से कुछ लेना देना हमें नहीं है और हम जगन्नाथ जी को दर्शन करने आए हैं, उनकी तरफ देखना है, खाली वोट करना है। ये तो ये एक और ये हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में हुआ है, एक हमारे भुरजन प्रभु जी बता रहे थे, उनका खुद का एक्सपीरियंस है। जब वो कृष्ण बलराम मंदिर के अंदर जब कीर्तन हो रहा था तो भक्त लोगों ने क्या किया, यूजुअली नहीं भक्त लोग करते हैं कि हाथ ऐसे पकड़ के पूरा घूमते हैं, ठीक है। तो उनको शुरू में पसंद नहीं आया, एक तो कि जब भक्त लोग करते हैं तो फिर जो भगवान का नाम छोड़ के जितने लोग देखते हैं वो देखने लग जाते हैं, ठीक है, वो जो भी करते हैं कुछ ग्रेसफुली बहुत आराम से करना चाहिए। वो उतने तेजी से कर रहे थे और वो पीछे पीछे जा रहे थे, उनको ये डर भी लगा कि अभी ये कुछ होगा क्या, किसी के ऊपर जाके गिर सकते हैं, कोई बूढ़े आदमी के ऊपर गिर सकते हैं, कुछ हो सकता है। वो पूरा घूमते घूमते बस वही हुआ है, क्या हुआ, एक बुजुर्ग ब्रजवासी पर भक्त उनके ऊपर जाके गिर गए। तो वो तो गुरुजन प्रभु जी ने कहा कि अब मैं जाता हूं इनको सिखाता हूं कुछ, तो आगे बढ़ने लगे। तब उन्होंने देखा कि ब्रजवासी जो औरत हैं वो गिरी, उठ के कृष्ण बलराम जी को देखने लगे, कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, उन्होंने क्या किया सब। तो उन्होंने सोचा कि इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई ड्यूटी। और उनका चेतना देखिए, वो खुद गिर गए ब्रजवासी लोगों का, वो खुद भगवान के तरफ, कुछ भी हुआ उससे कोई मतलब नहीं। हम वहां पर मंदिर में भी रहते हैं और चेतना इसी पे लगती है कि क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा। अभी हरिदास प्रभु जी भी यही कह रहे थे कि हम लोग कीर्तन में रहते हैं, क्लास में रहते हैं, नहीं कहीं और रहते हैं, फिजिकली रहते हैं। अब इसमें देखिए, जो भक्त का जो है भगवान के साथ कुछ भी हो, अनशेकेबल फेथ, अचलम भक्ति, जो सुदामा जी पूछ रहे हैं और जो प्रभुपाद जी ने सिखाया हमें, तो जो सुदामा जी ने जो जो पूछा है प्रभुपाद जी के अंदर है, प्रभुपाद जी ने साफ साफ हमें दिखाए। तो हम लोग प्रभुपाद अनुगा बोलते हैं, हम लोगों का अगर प्रभुपाद जी का अनुसरण करना है ये सब फॉलो करना पड़ेगा। जब गुरु जो है इस पृथ्वी पे होते हैं उनका सेवा करना है, जो वापस सेवा, जो पर्सनल सर्विस कहते हैं। शिला प्रभुपाद जी अभी है नहीं क्या, शिला प्रभुपाद जी ने क्या कहा, माई बॉडी इज इस्कॉन, इस्कॉन इज माई बॉडी, तो है ना, तो वापू तो है, वाणी तो दिया है, तो वापू तो है, तो इस्कॉन को सेवा करना है। तो प्रभुपाद जी सब हमारे लिए दे के गए हुए हैं, हमें खाली हवा देना है। हरे कृष्णा कृष्णा। किसी का कोई कमेंट हो, प्रश्न हो? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, शिला प्रभुपाद की।